हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज चौथा दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्संग में आप आशीष परिवार, लजपत राय, विनोद जी, शुभम, प्रतिवर्ष, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी नव वर्ष के आगमन के स्वागत में जन कल्याण और अंतःकरण की पवित्रता और भगवत भक्ति के लिए ये आयोजन किया गया है। आप सब इसमें पधारे हैं, आपका स्वागत है। एक धर्म का अनुष्ठान होता है, जो करता है उसी को फल मिलता है, और फल मिले न मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये भागवत धर्म ऐसा है, इसमें बोलता एक है और फल मिलता है सुनने वाले को, जो नहीं करता है उसको भी फल मिलता है। ये भागवत धर्म की विशेषता है। इसकी विशेषता ये है कि बोलने वाला एक है लेकिन सुनने वाले को फल मिलता है, और सुनने का फल महत्वपूर्ण सबसे फल है। धर्म के अनुष्ठान में अंतःकरण की शुद्धि ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इस भागवत धर्म और भागवत श्रवण से अंतःकरण की शुद्धि के साथ भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। भाग्य से भागवत का श्रवण मिलता है। पहले तो लोग बड़े बड़े ऋषि लालायत होते थे कि कोई भागवत का सत्संग सुनाने वाला मिले। सूत गोस्वामी, जो ऋषियों से अधिक उत्तम नहीं था अपने वर्ण आश्रम की व्यवस्था के अनुसार, 88,000 ऋषि सारे व्रक्त थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, ऊर्ध्वरेता थे। सूता तो गृहस्थी भी था और जाति के हिसाब से भी ऋषियों से उच्च नीच जाति नीचे की जाति का था, लेकिन फिर भी भागवत इतनी महान है कि उस सूत गोस्वामी को ऊपर आसन के ऊपर बिठाकर और ऋषि नीचे बैठकर भागवत सुन रहे थे। तो ये महिमा भागवत की है। ये बहुत बड़ा अद्भुत दर्शन भागवत का देखने को मिलता है कि सूत गोस्वामी भागवत कह रहा है और ऋषि भागवत सुन रहे हैं। तो कितनी भागवत अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए इसके सुनने के लिए जब तक लोभ पैदा नहीं होगा, लौलोप्यम एक, इसका लौलोप्य या लोभ ही केवल इसका दाम है। इसकी कीमत क्या है? लोभ दिल में पैदा करना। भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए लोभ महत्व, दुनिया का लोभ बंधन में डालता है। हरि कथा और हरि भक्तों के संग का लोभ आदमी को बंधन से मुक्त करता है। ये जब तक हम कई बार ये बात बताते हैं कि ये सत्संग ऐसे है जैसे स्कूल होती है, विद्यालय होता है। आप अपने बच्चों को, बच्चा अगर स्कूल नहीं जाए आपको कैसे लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना? स्कूल नहीं जाए, ठीक तरह से बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना? आप उनके माता पिता हो, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं और ठीक तरह से पढ़ें, ऐसे ना? इसी प्रकार से साधु संत महात्मा ब्राह्मण चाहता है कि लोग इस कथा के अंदर उन बच्चों की तरह रोज नित्य नेम से आए। उनके न आने से जैसे माता पिता को दुख होता है, ऐसे करुणा वाले हृदय साधु दयालु को भी दुख होता है कि इतना महत्वपूर्ण स्कूल बड़ा खर्चा करके किसी ने चालू किया है विद्यालय, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं आ रहा। जितना माता पिता को प्रेम होता है अपने बच्चों से और उन्हों को पढ़ा के चाहते हैं कि ये अच्छे आदमी बने, ठीक ऐसे ही साधु समाज चाहता है कि मानव जन्म की सफलता के लिए सत शास्त्र और सत्संग का ठीक तरह से सत उपयोग जीवन में कर ले। इसमें नहीं आना अथवा देर से स्कूल में देर से जाने के ऊपर पुराने जमाने में तो बहुत बड़ी कड़ी सजा दिया करते थे मास्टर जी। 10 मिनट भी लेट में आना ठीक नहीं माना जाता था। नेम एक बहुत बड़ी बात है। किसी ने कह दिया कि क्या जरूरत है भाई टाइम टेबल की, सुबह सवेरे क्या करना, आरती करने की, जब चाहे तब आरती कर सकते हैं, जब चाहे तब भगवान का भजन कर लें, वो तो ठीक है। ऐसे अगर नेम बना लें कि जिसको जब चाहे तब स्कूल में जाए तो स्कूलें चलेंगी क्या? टाइम फिक्स होता है कि नहीं होता है? तो हर चीज का टाइम फिक्स होता है। जिसने समय का कदर नहीं किया और समय उसको रास्ते में दरबदर करके छोड़ देता है, समय से कोई बलवान नहीं है। इस दुनिया में एक मिनट का किसको महत्व पता लगता है? जिसकी ट्रेन मिस हो जाती है, एक मिनट के कारण आंखों के सामने जाती हुई नजर आती है, उसको पता लगता है कि एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। एक सेकंड का किसको महत्व का पता लगता है? जो एक्सीडेंट होते होते बचता है। ये दो गाड़ियां ऐसे भिड़ी, एक सेकंड की दूरी की वजह से एक्सीडेंट बच गया, उसको पता लगता है कि एक सेकंड जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और जो साप्ताहिक पत्रिका निकालते हैं उनको मालूम है कि एक दिन कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन की कमी से सप्ताह का पत्रिका नहीं निकली तो सारा मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। तो समय का जब तक हम कदर नहीं करना सीखेंगे, वैसे समय है क्या? काल कौन है? भगवान काल का स्वरूप है। जो उसका सम्मान करता है काल उसका पालन पोषण करता है, जो सम्मान नहीं करता है काल के विकराल गाल में समाप्त हो जाता है। तो महत्वपूर्ण सत्संग, कथा, कीर्तन, मंदिर, उसके अंदर नेम टेम जीवन में अति आवश्यक होता है। कल चर्चा चल रही थी अपने चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत विसर्ग, विशेष सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा जो होती है, हर एक व्यक्ति को अलग आकृति प्रकृति संस्कृति मिलती है, 84 लाख भिन्न भिन्न जूनियां हर एक के कर्मों के अनुसार बनती हैं। उसके वर्णन के अंतर्गत चार विभाग चार स्कंद के किए थे। पहले विभाग में धर्म के अनुष्ठान में 7 अध्यायों में केवल वैष्णव परम वैष्णव शंभु का अपमान किया दक्ष ने, यज्ञ रूपी धर्म निष्फल हो गया, भगवान विष्णु का आना और दक्ष का क्षमा याचना मांगना और उदारता भगवान शंकर की क्षमा करने की, तो भगवान विष्णु की प्रकट हुए। भगवान विष्णु यज्ञ रूप है, यज्ञ का अर्थ ही विष्णु होता है। भगवद गीता में तो पूछा है अर्जुन ने आदि यज्ञ कौन है, और भगवान कहते हैं अहम आदि यज्ञ, ये कहां रहते हैं? हृदय, सबके हृदय में मैं बैठा हूं। तो भगवान विष्णु के आने से यज्ञ की सफलता होती। 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव, ध्रुव के भक्त में विशेषता क्या है? ध्रुव के चरित्र में निष्ठा, अटल विश्वास। मेरी मां ने कहा है भगवान वन में मिलेगा तो मिलेगा, 5 साल का बच्चा है, इतना अटल विश्वास है। मेरे गुरु नारद जी ने कहा है कि ये मंत्र जपो तेरे को भगवान मिलेगा, हां मेरे को इसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। इस अटल विश्वास जिसको होता है जीवन में, वैसे भी भक्ति शुरू ही विश्वास से होती है, श्रद्धा से होती है। आदौ श्रद्धात साधु संग, पहले श्रद्धा चाहिए, जब श्रद्धा होगी तब साधु की कृपा होगी। आपकी श्रद्धा को देखकर भगवान किसी साधु संत को आपके उद्धार के लिए आपके पास भेज देगा। नारद को यह अटल विश्वास था, मेरी मां ने कहा है कि मेरे को वन में भगवान मिलेंगे, क्योंकि सब राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के वन में चले जाते थे। ये तो वैदिक संस्कृति का प्रमाण है कि हर राजा एक समय आया राजपाट को तुच्छवत छोड़ के वन के अंदर जाके तपस्या करते थे, क्योंकि वहां भगवान मिलता था। तो राज से वैभव से वन के अंदर साधुओं के संग में बैठकर सत्संग सुनना बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज ध्रुव की इस निष्ठा को इतना चाह के साथ, इतने प्रेम के साथ साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप चैतन्य महाप्रभु, 100 बार इस चरित्र को सुना, 100 बार ध्रुव चरित्र को सुना, केवल इसलिए कि जब तक किसी का अटल विश्वास दृढ़ संकल्प नहीं होता तब तक भगवान की भक्ति और भगवत प्राप्ति संभव नहीं। बस 100 बार चरित्र को सुना। हम तो कहते हैं ध्रुव की कथा करें, इसको तो हमें मालूम है, ध्रुव को मां ने बैठने नहीं दिया, वो चला गया वन में, 6 महीने में भगवान मिल गया, कथा नहीं है ये। सोचो कि उसने कितनी हिम्मत की, 5 साल का आपका बच्चा कोई जाके 6 महीने तपस्या करने की हिम्मत कर सकता है क्या? उसके दृढ़ संकल्प को। तो यहां ध्रुव चरित्र में भी गया तो अर्थ प्राप्ति के लिए था, राज के सुख के लिए था, लेकिन भगवान प्राप्ति के बाद राज का सुख तुच्छ नजर आया, और भगवान के दर्शन से जीवन को सफल माना, यहां अर्थ की प्राप्ति भी भगवान नारायण की प्राप्ति में सफल हुई। 11 अध्यायों में इसी दुरु वंश में महाराज पृथु, जिसने सबकी इच्छाओं की पूर्ति की, सब प्राणियों के लिए अन्न का उपादान किया, बिच्छू के लिए भी तो, शेर के लिए भी तो, पक्षी पक्षु के पशु के लिए भी, सबका जो राजा है उसकी प्रजा सब है, पेड़ पौधे भी उसकी प्रजा है। ये तो आज कम से कम इतना कहते हैं कि कोई पेड़ मत काटो, क्योंकि ये भी प्रजा के अंतर्गत आता है, वो भी प्राणी है, उसके अंदर भी आत्मा है, तभी तो बढ़ता है, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। और इससे हमको शिक्षा ये मिलती है, हमारे घर में रहने वाली चींटी माकोड़ी भी हमारे घर का सदस्य है, अगर हम खाते हैं तो उसके लिए भी दाना डालना चाहिए। इसलिए भारत संस्कृति की हर माता घर के अंदर पहली रोटी बना के बाहर गाय को देती थी, दूसरी आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी, जाके हाथ में मुट्ठी में दाने लेकर जाके कीड़ी मकोड़ी को देके आती थी, बाहर पक्षियों को दाने देते थे। ये सब मर्यादा इस संस्कृति में, इसी शास्त्रों के अंतर्गत में, इन बड़े महाराजों के चरित्रों से हमने सीखे थे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज पृथु ने वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार सबके निर्वाह का प्रबंध किया, गांव बसाए, नगर बसाए, शहर बसाए। पहली बार इस पृथ्वी के ऊपर संचार, पहले तो लोग जहां पानी होता था वहां रहते थे, जहां वर्षा होती थी वहां रहते, बंजारों की तरह घूमते रहते थे। महाराज पृथु पहले हैं जिन्होंने नगर गांव बसाए, सबकी व्यवस्था की तब से, और धरती को समतल किया, और विशेष रूप से ये पंजाब का पूरा हिस्सा ये पृथु महाराज के द्वारा समतल की हुई भूमि है। और फिर पृथु वंश में आगे चलकर बहुत कर्मठ एक राजा हुए, प्राचीन बरहित। प्राचीन बरहित इतना कर्मठ यज्ञनिष्ठ राजा था कि उसके यज्ञ की, इतने यज्ञ किए उसने कि जो घास बिछाते हैं बैठने के लिए, कुछ उसके पूर्व मुखी घास से पूरी पृथ्वी ढक गई। लेकिन नारद के मन में अनुग्रह और कृपा आई कि ये यज्ञ तो करता है, पशु की बलि भी दे रहा है, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करता है, भगवत प्राप्ति का इसको अभी तक ज्ञान नहीं है। नारद जी आके कहते हैं, प्राचीन बरहित, आपके यज्ञ तो बड़े अद्भुत हैं, लेकिन ये पशु जिनको आप यज्ञ में बलि के रूप में दे रहे हो, आपको मालूम है कि ये सारे पशु ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, जब आप शरीर त्यागे तो वो पशु आपको ऐसे बलि देंगे आपकी भी। प्राचीन बरहित तो ऐसी क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे संभव है। तब नारद ने अपने योग बल से प्राचीन बरहित को, उन सारे पशुओं को दिखाया आकाश में कि देखो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन तुम्हारे प्राण निकलेंगे ये सब पशु तुम्हारे से अपना प्रतिशोध लेंगे, तुमने अपने कामना के लिए इन सबको बलि चढ़ाया है। किसी भी पशु की हत्या अगर हम करते हैं तो वो पशु हमारी हत्या, ये तो शास्त्र में लिखा है कि जो पशु खाने वाले हैं, मांसाहार करते हैं, उनके लिए कहा है उमावस के दिन केवल काली रात को काले बकरे को काली माई के सामने बलि चढ़ाने के सामने उसके कान में कहना है, हे बकरा, इस वक्त मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम्हारे को बलि चढ़ा रहा हूं, अगले जन्म में तुमको अधिकार है, तुम मेरे से अपना हिसाब ले लेना, ये भी कहना है मंत्र उसके कान में। और वो भी एक बार केवल महीने में, ये भी नियंत्रण करने के लिए नियम बनाया है शास्त्र ने, हर एक चीज का नियम बना हुआ है। आज प्राचीन बरहित को समझाने के लिए नारद जी ने एक उपाख्यान सुनाया। उपाख्यान का मतलब कोई कहानी सुनाई जाती है जिसके द्वारा आदमी का नींद खुल जाती है, आंख खुल जाती है, मोह नष्ट हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है, और उस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। पुर किसको कहते हैं, नगर को, जैसे कानपुर नागपुर। और रंजन किसको कहते हैं, जिसमें आदमी सुख ले, मनोरंजन। तो पुर में रंजन, और पुर जैसे हम नगर को पुर कहते हैं, ऐसे भगवत गीता इस शरीर को पुर कहते हैं, नव द्वारे पुरे देही। ये देही जो हमारा शरीर है ना, ये एक पुर है, एक नगर है, इसके कितने दरवाजे हैं आपके दिल्ली के, दिल्ली दरवाजा, आगरा का दरवाजा, अजमेरी गेट, ये गेट थे ना पहले, तो ये हमारे शरीर के सात गेट तो यहाँ है सिर्फ अपने सर में, दो आंखें, दो नाक, दो कान और एक मुख, और दो नीचे मलमूत्र त्यागने की इंद्रियां, ये सात, ये नौ द्वारे हैं, इसको पुरी बोलते हैं, ये हमारा शरीर पुरी है। तो पुरंजन, इस पुरी में रंजन करने वाला कौन है, कौन है जो इस पुरी में सुख लेता है, इस शरीर में सुख कौन लेता है अथवा दुख कौन भोगता है, आत्मा। जब आता है तब वो नहीं रहेगा तो ये शरीर तो किसी काम का है ना, ये शरीर तभी काम का है जब इसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, तो वो पुरंजन कौन है, आत्मा। उसका एक है अज्ञात मित्र, नहीं अज्ञात मित्र का मतलब है तो मित्र लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमको हमारा शुभ चिंतक है। पुरंजन मतलब आत्मा। उसका है एक अज्ञात मित्र, अज्ञात का मतलब जिसको हम नहीं जानते, आत्मा नहीं जानती, लेकिन वो आत्मा को जानता है। जैसे हम आपको ऐसे उदाहरण कल दिया था, छोटा बच्चा जन्म लेता है वो अपने माँ बाप को जानता है, लेकिन माँ बाप तो जानते हैं ना कि ये हमारा बच्चा है, हाँ जी, माता पिता तो जानते हैं कि ये हमारा बच्चा है, बच्चा तो नहीं जानता है कि ये हमारे माता पिता कौन है। ठीक ऐसे ही आत्मा तो नहीं जानता है कि भगवान हमारा परम पिता है, लेकिन भगवान तो जानता है कि ये मेरा अंश है। तो वो अज्ञात मित्र के रूप में जब आत्मा कभी भी किसी शरीर में जाती है, भगवान इतना दयालु है, इतना करुणामय है, इतना शुभ चिंतक है, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इस दुनिया के सारे नातेदार रिश्तेदार तो इस शरीर को छूटने के साथ सब रिश्ता तोड़ देते हैं, आत्मा शरीर से गया सब संबंध समाप्त हो गए, लेकिन भगवान कभी किसी हालत में हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए उसको मित्र से भी ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द उसको भगवद गीता में सोहृद, वो हमारा सोहृद है। सो कहते हैं अपने को और हृदय कहते हैं दिल को, वो हमारी दिल में सदा हमारे साथ रहता है। तो नारद जी कहते हैं पुरंजन नाम का राजा भारत में भ्रमण करने लगा। भारत का क्यों बोला, वर्ष तो और भी बहुत हैं। भारत का अर्थ से भी आजकल का हमारा इंडिया का मैप मत समझना, भागवत की भारत का अर्थ है पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोक हैं उस सबको भारतवर्ष कहते थे, उस सारे का नाम भारतवर्ष है, इस पूरे वर्ष का नाम भारतवर्ष है, उसके अंदर अमेरिका, अफ्रीका, सब ऑस्ट्रेलिया सब आ जाते हैं, ये सब हम भारतवर्ष के, भारत जो भागवत का भारतवर्ष है, जो वेदों का भारतवर्ष है, वो ये कटा पिटा टुकड़ा आजकल का नहीं है। तो 50 साल पहले तो पाकिस्तान भी भारत ही था, और उससे पहले बर्मा भी भारत था, ये कोई अफगानिस्तान कंधार काबिल के अंदर गंधारी वहां से भीष्म पितामह लाया था, तो ये तो सारा 50 साल पहले ये एक ही टुकड़ा, एक ही राज हुआ करता था किसी जमाने में 100 साल पहले, और उससे पहले तो इस पूरे वर्ष को ही भारतवर्ष कहते थे। भारतवर्ष ही केवल कर्म भूमि है, यहां कर्म करने का अधिकार है, और कहीं किसी वर्ष में भी कर्म करने का अधिकार नहीं है। 9 वर्ष है उसमें से एक भारतवर्ष है, 8 और दूसरे वर्ष जो है वहां किसी को कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं, इसलिए भारतवर्ष में पुरंजन आया। और भारतवर्ष में पुरंजन को एक पुरंजनी मिली, सुंदर कन्या मिली मानी समझ लो, उसको देख के आकर्षण भी हुआ और उससे बातचीत करके उसको मना लिया और उससे विवाह भी कर लिया, ये कौन है पुरंजनी। और पुरंजनी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, है तो बड़ी सुंदर लेकिन इसकी रक्षा कर रहे हैं 5 फन वाला सांप, एक सांप है 5 फन वाला वो उसकी रक्षा कर रही है, 11 सेवक उसके चारों ओर खड़े हुए हैं और अनेक सेवकाएं पीछे आ रही हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, और प्राचीन बरीज कहती आप क्या कह रहे हो महाराज नारद, मेरे को समझ में नहीं आता पुरंजनी कौन है, 5 फन वाला सांप कौन है, 11 सेवक कौन है। तब नारद कहता है ये पुरंजनी बुद्धि है, 5 फन वाला सांप 5 प्राण है, प्राण अपान समान उदान, और 11 सेवक का 5 इंद्रियां कर्म, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन है। अनेक सेवकाएं इच्छाएं हैं जिनको पूरी करने के लिए बुद्धि संसार के अंदर भटक रही है। तो ये बुद्धि और आत्मा का जब आपस में मिलन होता है, इस शरीर के अंदर क्या है पहले ये भी समझ लो। ये शरीर जो हमको दिखता है वो 5 तत्वों को बना हुआ है। 5 तत्व का पुतला कीना, नाम रखो या बंदा। ये जो बंदा आपको दिख रहा है ये 5 चीजों का बना हुआ है। एक तो है पृथ्वी, मिट्टी, मुट्ठी भर मिट्टी होती है अग्नि संस्कार के बाद, पूरे 100 किलो के आदमी की एक मुट्ठी भर मिट्टी बचती है, बाकी कहां जाता है सब? हवा हवा में चली जाती है, पानी उड़ जाता है, अग्नि अग्नि के साथ अग्नि में मिल जाती है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, 5 तत्वों का बना हुआ ये पुतला है। इस 5 तत्वों के पुतले के अंदर एक छोटा सा सूक्ष्म है जो दिखता नहीं है लेकिन जानते सब हैं, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। वो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार का। मन, बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, और उस मन, बुद्धि और अहंकार में बुद्धि महत्वपूर्ण है। बुद्धि आत्मा से तदात्म्य करती है, बुद्धि आत्मा का निकट का पड़ोसी है। तो यहां पुरंजन ने पुरंजनी से विवाह कर लिया, बुद्धि के साथ आत्मा ने तदात्म्य कर लिया, और फिर इस शरीर रूपी नगर में आनंद से दोनों रहने लगे। और फिर लिखा है कि इसके दरवाजे, जो आंख के दरवाजे से दोनों घूमने जाएं, देखने जाएं, फिल्म देखने जाएं, बहुत सुंदर दर्शन करने के लिए चले जाएं, कान के दरवाजे से अच्छा गाना सुनने के लिए चले जाएं, मुख के दरवाजे से गोलगप्पे खाने चले जाएं, पानी पूरी खाने चले जाएं, हाँ, ये सब दरवाजों के स्वास्थ्य से बाहर निकलकर भोग करने चले जाएं, ऐसा सारा वर्णन बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि शरीर में करते क्या है हम, सब लोग क्या करते हैं शरीर में? केवल इन आंख, कान, नाक से कुछ सूंघने का शौक होता है, तो बड़ा आजकल सेंट ये वो, ये मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ये वाला और डिओडोरेंट चाहिए, ये वाला सेंट चाहिए, ये नाक की खुशबू के लिए और काय के लिए, और पेट भरने के लिए बहुत सारे प्रकार के भोजन और भोग का थोड़ा सा जरूरत, इसके अलावा और करते कि जरूरत क्या है शरीर की? इस शरीर से केवल 4 ही चीजें हम ढूंढ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और निद्रा भय मैथुन्य, बस 4 चीजें, खाने के लिए कुछ चाहिए, सोने के लिए कोई स्थान चाहिए, और हमें अपनी सुरक्षा के लिए कोई न कोई साधन चाहिए, और कुछ मैथुन्य का मतलब स्त्री पुरुष हमेशा आपस में रह के भोग करना चाहते हैं, ये 4 चीजें करने के लिए आदमी इसी के ऊपर सोच रहा है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, पशु भी समाना, पशु में मतलब यही है, तो हम पशु से ऊपर कैसे हो गए, बड़े कैसे हो गए? धर्म अधिको विशेष, अगर धर्म को समझते हैं और धर्म का आचरण करते हैं, मर्यादा में रहते हैं, तो मानव है, नहीं तो पशु के पशु रह गए। एक बार प्रभुपाद ने ऑस्ट्रेलिया में देखा, समुद्र के किनारे एक आदमी लकड़ी के अंदर धागा बांध के और मछली पकड़ रहा था, तो प्रभुपाद ने पूछा ये क्या कर रहा है? बोला ये मछली पकड़ रहा है। बोला वो तो बगला खड़ा है, वो भी मछली पकड़ रहा है, फिर इसमें और बगले में अंतर क्या है? जो बगला पानी में खड़ा है वो भी खड़ा होकर मछली तो पकड़ रहा है ना, और ये आदमी होके वही काम कर रहा है, तो इससे अच्छा है बगला ही बनता, ये आदमी का शरीर क्यों खराब कर रहा? आदमी बनने के बाद वही पशु वाला काम करने जा रहा है, तो आदमी बनने की जरूरत क्या थी इसको? एक और को देखा पानी के ऊपर सर्फिंग कर रहा है, वो सर्फिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, वो पानी के ऊपर दौड़ते हैं हवा के साथ। बोला ये क्या कर रहा है? बोला सर्फिंग। बोला सर्फिंग ये सफरिंग है, ये सफरिंग इसकी हो रही है, बहुत दुखी हो रहा है इसमें, इसको पानी के ऊपर ऐसे तैरने का शौक है, तो मगरमच्छ बन जाए, मछली बन जाए, काय के लिए मानव के शरीर को बेकार में व्यर्थ गंवा रहा? कौन सा कमाल है? एक बार किसी महात्मा ने कहा कि मैं 50 साल बड़ी तपस्या करके आया हूं, क्या कमाल कर दिया आपने? बोला पानी के ऊपर मैं चल सकता हूं ऐसे, बोला 50 पैसे का काम 50 साल में किया है। बोला क्या कह रहे हैं? बोला 50 पैसे में नाव के अंदर हम भी पार चले जाएंगे, तुम अपना 50 साल खराब करके पानी के ऊपर चले तो कौन सा फर्क पड़ा। 50 पैसे में पानी के ऊपर तो नाव में जा सकते हैं, फिर तुमने 50 साल जिंदगी के क्यों खराब कर दिए इस काम के लिए? इसी काम के लिए जिंदगी मानव की मिली है क्या? अरे मानव की जिंदगी तो हमको मिली है असल में भगवान को प्राप्त करने के लिए। नर शरीर में ही नारायण को प्राप्त किया जा सकता है और कोई शरीर में भगवान मिल नहीं सकता। कर्म करने का अधिकार केवल मानव को है, पशु कर्म नहीं कर सकता है, वो तो बेचारा ऑटोमेटिकली कर्म भोग ही नहीं है उसमें, जो उसने कर्म किया उसको भोगेगा, खत्म करेगा, आगे चलेगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन है उसमें। उसको कहीं स्कूल, किसी कुत्ते को स्कूल जाते देखा है? हाँ, बकरी को अस्पताल में जाते देखा है? अपने आप गई कोई? गधे को लाल बत्ती के ऊपर रुकते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, कि वो ये नहीं कर सकते हैं। मानव का ये काम है, ये मर्यादाएं मानवता के लिए है। आज भोग करते करते एक दिन पुरंजन घूमने चला गया, देर से वापस लौटा, पुरंजनी नाराज होके बैठ गई। ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कोई कहता है मैं वृंदावन जाता हूं, एक दिन जाता है साधु संघ में, 3 दिन रह जाता है, जब घर आता है तो घरवाली झगड़ा करती है, कहां 3 दिन चले गए थे, बाबा बन गए क्या, घर छोड़ के चले गए क्या? तो पुरंजन तो आखिर भगवान का अंश है आत्मा, कभी कभी भगवान की भक्ति में मानो चला भी गया तो बुद्धि कहती है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पड़े रहो। कैसे भी उसने पुरंजनी को मना तो लिया, लेकिन अब दूसरी तरफ नारद जी एक और बात बता रहे हैं प्राचीन भरत को, लेकिन समझ आप भी लो। नारद जी कहते हैं एक चंदवेग नाम का राजा है, उसकी एक कन्या है, उसका नाम है काल कन्या, वो पुरंजन से विवाह करना चाहती और पुरंजन उससे विवाह नहीं करना चाहता। बोला क्यों? बोला वो काली है, बूढ़ी भी है और सबसे विवाह करना चाहती है और कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन वो सबसे शादी करती है। पुरंजन ने बोला मैं शादी नहीं करूंगा काल कन्या से। चंदवेग के पास 360 काले सिपाही, 360 गोरे सिपाही पुरंजन के पुर के ऊपर आक्रमण किया, जवर को साथ लिया। अब तो पुर की रक्षा के लिए पुरंजनी के पास जो 5 फण वाला सांप था उसने थोड़ी रक्षा की, 11 सेवक लगे लड़ने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद दोनों थक हार गए। ये क्या कथा है? ये कथा ये है, चंडवेग काल है, समय है, समय के पास 360 दिन और 360 रातें हैं जो इस शरीर के ऊपर रोज आक्रमण करती हैं, और ये पूरा काल कन्या ये बुढ़ापा है जो सबसे शादी करना चाहता है, ये लड़की से भी शादी करता है और लड़के से भी शादी करता है। ये बुढ़ापा है काल कन्या, कोई नहीं उसको स्वीकार करना चाहता है, लेकिन ये सबके पास अपने आप आके गले से पकड़ती है, गले में बाहें डालती है और छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई आदमी बुढ़ापे से बच सकता है? कोई ऐसी दवाई निकली है जिसमें आदमी बुढ़ापे से बच जाए? नहीं, अभी तक नहीं है। कोई इलाज अभी निकला है ऐसा? इसलिए भगवत गीता कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। दुनिया में दुख क्या है? जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार होना और मरना। कभी कभी डॉक्टर लोग हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा लोगों को ठीक करने का खोज करके निकाली है, तो इस अस्पतालें कम होनी चाहिए ना भाई। अगर हमने बीमारों को ठीक करने का ठीका लिया है तो अस्पताल कम होनी चाहिए ना। लेकिन अस्पताल तो रोज एक नई बन रही है, इसका अर्थ है लोग बीमार ज्यादा ही हो रहे हैं ना भाई। अस्पतालें बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? आपके हमें याद है कि पूरे गांव में एक डॉक्टर मुश्किल से हुआ करता था, अब तो हर घर घर में डॉक्टर है।
تو بیمار تو لوگ ہو ہی رہے ہیں کہ بیماری بند ہو گئی کیا؟ پہلے چیچک کی بیماری سے ڈرتے تھے، چیچک چلی گئی، کینسر آ گئی، لیکن مرنا تو بیماری تو بند نہیں ہوئی. یہ تو جو چنڈ ویک نے وواہ کرایا جوہر اور بھے، یہ بیماریاں اس کے ساتھ اس کو دے دیے ساتھ میں کہ اس کو ساتھ لے جاؤ یدھ بھومی میں، شریر کے اوپر آکرمن کرو. سمے آنے کے اوپر کال کنیا نے تو وواہ کر ہی لیا، پورنجن کا پرناس ہو گیا، لیکن مرتے سمے پورنجن کا دھیان اپنی پورنجنی میں لگا رہا. انت سمے میں مرتے ہوئے کس کا دھیان کیا؟ اپنی پتنی کا. پھل کیا ہوا؟ دوسرے جنم میں پورنجن ودربھی ہوئی، لڑکی ہو گئی. اس لیے بھاگوت میں کبھی کبھی کچھ لکھا ہے استریوں کے لیے، تو آپ اپنے لیے اس لیے مت سمجھنا، اس جنم میں آپ استری ہیں، دوسرے جنم میں، اگلے جنم میں یہ استریاں رہی ہوں گی، پھر کبھی آپ ہو جائیں گے. یہ تو دنیا میں بدلتا رہتا ہے. پورنجن پرش سے استری ہو گیا، ودربھی ہو گیا، ودربھ دیش میں جنم ہوا، وواہ ہوا اس کا ملیا دھوج راجا کے ساتھ. یہ تو سادھو پرش تھا. سمے آنے کے اوپر ملیا دھر راجا نے پران تیاگ دیے. ودربھی رونے لگی. اس وقت اجیات متر جو پورنجن کا تھا، اس نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ بولا میرا پتی. بولا یہ تمہارا پتی ہے، اس سے پہلے تم اس کے پتی تھے. کبھی تم استری رہی ہو، کبھی یہ استری رہی ہے، کبھی تم پرش رہے ہو، کبھی یہ پرش رہا ہے. ارے میں تیرا متر ہوں، تم نے کبھی میری طرف نہیں دیکھا؟ نہ تم استری ہو نہ پرش ہو، تم میرے انش ہو. میں تیرا متر ہوں، میں تیرا پرم پتا ہوں اصل میں. اب تب پورنجن کی یہ کتھا سن کر پراچین برہت کو ویراگ اور تیاگ ہو گیا کہ کون راجا ہے؟ آج راجا ہوں، کل پرجا بھی بنوں گا، کل پرجا ہوں تو راجا بن جاؤں گا. سمے بڑا بلوان ہے. میرے کو پرانی بات یاد آتی ہے، ایک راجا نے اپنے منتری سے پوچھ لیا بھگوان کہاں ہے، کیسے ملتا ہے، کیا کرتا ہے. منتری نے بولا سمے دیجئے مہینہ ایک، میں اس کے اوپر ساری درشنوں کو دیکھ لوں، شاستروں کو اندر سے کھوج کر کے آپ کو اس کا اتر دوں گا. گھر میں جا کے چنتا میں بیٹھا ہے. بیٹے نے کہا پتا جی آپ پریشان کیوں ہیں اور کام پہ نہیں جا رہے ہیں مہاراج کے پاس؟ بولا بیٹا مہاراج نے پرشن بہت ادبھت پوچھا ہے، میں اس کی کھوج کر رہا ہوں. بولا کیا پرشن ہے؟ بھگوان کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے. بچہ بولتا یہ تو میں اتر دے دوں گا، مجھے لے چلیے میں بتا دوں گا. باپ کو بیٹے کے اوپر وشواس تھا، بیٹے کو لے کر آیا. مہاراج نے کہا آپ جلدی آ گئے. بولا بس میرا آپ کے پرشن کا اتر مل گیا. بولا ہاں اتر دیجیے. بولا میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. بیٹے کو سامنے بٹھایا، مہاراج بیٹھے ہیں. مہاراج پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ بھگوان کہاں ہے؟ بیٹا کہتا ہے بھارت ورش کی سنسکرتی کو جانتے ہو؟ ویدک کوئی اتھتی آئے تو اس کو جلپان کا تو آدمی پوچھتا ہے. بس آیا ہے پہلے پرشن پوچھنا شروع کر دیا. ہاں نہیں نہیں بیٹا تم کیا پیو گے؟ بولا میں بچہ ہوں، میں دودھ پیوں گا. اچھا تو آپ دودھ پیئیں گے، تو دودھ آپ کا دودھ کا پربندھ کیا، راجا کے وہاں سونے کے کٹورے میں دودھ آ گیا، دودھ رکھا سامنے، بچے کو کہا دودھ پیو. بچہ دودھ میں انگلی بلاتا ہے، پھر دودھ کو دیکھتا ہے. جلدی پیو بیٹا، میرے کو پرشن کا اتر دو. بولا میں ابھی تو دودھ پیو کیوں میرے ہو؟ بولا میں دیکھ رہا ہوں. بولا کیا دیکھ رہے ہو؟ بولا دودھ میں مکھن دیکھ رہا ہوں، میں نے سنا ہے دودھ میں مکھن ہوتا ہے، اس میں دکھ نہیں رہا ہے. بولا ہاں دودھ میں مکھن ہوتا ہے لیکن اس میں دکھے گا نہیں. بولا کیوں نہیں دکھے گا، کیسے دکھے گا؟ بولا اس دودھ کو گرم کرنا پڑے گا، گرم کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑے گا، پھر اس میں جامن ڈالنا پڑے گا، پھر اس کو رات بھر رکھو گے صبح دہی بنے گا، تب اس کو منتھن کرنا پڑے گا، تب مکھن نکلے گا. تب بچہ بولا ہے مہاراج آپ کا پہلا پرشن کیا ہے؟ بولا بھگوان کہاں ہے؟ بولا یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مکھن کہاں ہے، مکھن دودھ میں ہے، بھگوان سب جگہ ہے، کون سی جگہ ہے وہاں بھگوان نہیں ہے؟ دودھ میں مکھن تو کن کن کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ میں مکھن کن کن میں ہے اور بھگوان اس برہمانڈ کے کیا کوٹی برہمانڈوں کے کن کن میں ہے. कैसे मिलेगा आपका प्रश्न है? तो आपने जो उत्तर दिया वही इसी का उत्तर है। क्या दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर ठंडा करना पड़ेगा थोड़ा, फिर जामुन डालना पड़ेगा, फिर दही बनाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा। बोला वो कैसे? बोला वो ऐसे, पहले तपस्या करनी पड़ेगी। दूध को गर्म करने का मतलब बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे थोड़ा जप करना पड़ेगा। ये तपस्या है, बैठना पड़ेगा, हरि कथा सुननी पड़ेगी। तब कोई साधु कृपा करके भगवान के नाम का दान देके जामुन डालेगा तेरे जीवन में। दूध के अंदर जामुन थोड़ा सा होता है, जब भगवान का नाम किसी साधु से मिलेगा तो तेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। दूध से दही बन जाओगे। दूध छलकता है, खराब होता है, दही छलकता नहीं है, दही खराब भी नहीं होता है, पांच दिन पड़ा होगा, दही बाद में भी काम आएगा, दूध काम नहीं आता है। तो तेरा जीवन में ठहराव आ जाएगा, तेरा जीवन स्थिर हो जाएगा जब तुम किसी साधु के संग में उससे भगवान के नाम की शिक्षा लेके जप करोगे। और फिर उसका मंथन करना पड़ेगा दही का। मंथन क्या है? रोज का बैठ के भगवान का नाम जपना, ये मंथन है, ये जीवन का मंथन है। जब ये मंथन करोगे तो तेरे जीवन में भी भगवान की प्राप्ति होगी। वही तो मक्खन है, इसी मक्खन को तो कन्हैया चुराने आता था जो उसको याद करता था। तो भगवान की प्राप्ति का माध्यम ये है कि तपस्या करो, साधु संग करो, हरि नाम लो, जीवन को थोड़ा स्थिर बनाओ और प्रतिदिन मंथन करो तो भगवान निश्चित रूप से मिल जाएगा। तब तीसरा प्रश्न क्या है? महाराज भगवान करता क्या है? बोला ये प्रश्न आप गुरु बन के पूछ रहे हो कि शिष्य बन के पूछ रहे हो? बोला प्रश्न पूछने वाला तो शिष्य होता है। बोला फिर आप ऊपर बैठे हो महाराज, मैं नीचे बैठा हूं, गुरु ऊपर होता है, शिष्य नीचे होता है। बात तो ठीक है आपकी। तब क्या किया? तब लड़का ऊपर बैठा, राजा नीचे बैठा। बोला आप क्या प्रश्न है महाराज आपका? बोला भगवान क्या करता है? बोला यही करता है, कब मुझे राजा बनाता है, कब तुम्हें राजा बनाता है, कब मैं ऊपर कब तुम नीचे हो, ये दुनिया ऐसे चलती। तो वो अज्ञात मित्र परमात्मा के रूप में जो सबके हृदय में बैठा है, आज कृपा करके कह रहा है कि तू न पुरजन पुरंजन है, न विद्रवी है, तू तो मेरा सच्चित आनंद अंश है। ममईवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, तेरे को भूत लग गया था, ये शरीर रूपी तेरे को भूत लग रहा है। ये पुरंजन, ये पुर क्या है? पांच भूत ही तो है ना, ये भूत पांच भूतों का शरीर है, यही तो भूत है, और कौन सा भूत है? ये भूत तुम्हारे को लगा हुआ था, अब तुम्हारा भूत उतर गया, वापस तुम अपने घर चलो। अब तो प्राचीन बरहित, तो वो सब कुछ छोड़ के, राजपाट छोड़ के नारद के इस उपदेश से भगवान भगवत भजन करने के लिए निकल गया। प्राचीन बरहित को 10 पुत्र थे, उनका नाम था प्रचेता, लेकिन ऐसा पिता था, उसने कहा बेटा पहले जाओ तपस्या करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, फिर आके राज करना, पिता की आज्ञा मानकर 10 पुत्र प्रचेता जा रहे थे तपस्या करने। रास्ते में एक सरोवर के अंदर से बहुत सुंदर आवाज सुनने को मिला, थोड़ा ध्यान देके खड़े हो गए, भगवान शंकर जी बाहर निकले। भोलेनाथ ने कहा आप भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हो, नारायण की उपासना करने जा रहे हो, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपको रुद्र गीत है वो सिखाता हूं। अब दीक्षा किसने दी प्रचेता को? शिक्षा और दीक्षा दी भगवान शंकर ने। भगवान भोलेनाथ इसकी सहायता करते हैं जो भगवान को प्राप्त करने जाता है, बाकी जो मूर्ख आता है भांग पीने के लिए उसको भूत ही बना देता है, वो जीते जी भूत हो जाता है अपने आप शंकर के पास जैसे जाए। बाकी जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जाता है उसको तो प्रचेताओं की तरह रुद्र गीत बहुत बड़ा सुंदर है। आज प्रचेता शिक्षा किससे प्राप्त करके गए? भगवान शंकर से, और जाके तपस्या की और साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए। जब भगवान शंकर जरा दीक्षा और शिक्षा का गुरु मिलता है तो भगवान मिलने में कोई देर नहीं, आज प्रचेताओं को भगवान की प्राप्ति हुई। प्रचेता वापस लौटे, पिताजी का राज के अंदर चारों ओर से बन ही बन हो गया, कोई राज करने वाला नहीं रहा, उनको क्रोध आ गया और बन को जलाने लगे अपनी योग अग्नि से। वनस्पतियों का राजा चंद्रमा उतर के नीचे आया, कहा बेटा ये वनस्पति भी तुम्हारी प्रजा है, इसको क्यों जला रहे हो? और इन वनस्पतियों की कन्या मिर्चा पद्मलोचा अप्सरा की, ये चंद्रमा ने कहा तुम्हारे से विवाह करेंगे। 10 प्रचेताओं का विवाह वन कन्या के साथ हुआ, प्रचेताओं ने जलाना बंद कर दिया। देखने के लिए ये है, सोचने के लिए ये है कि रुद्र रुद्र से शिक्षा लेकर भगवान विष्णु का दर्शन करने के बाद भी राज के अंदर आए तो क्रोध भी आया, फिर भी क्रोध आया, फिर राज किया। भगवान ने तो ये संसार बनाया है, किसी को संसार से निकालने के लिए भगवान विशेष प्रयास नहीं करता है, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा दयालु है कि जबरदस्ती जाके किसी को इस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। आज प्रचेताओं के पास नारद आया, नारद को प्रचेता कहते हैं, अब हमें उपदेश दीजिए, ये राजपाट और इस राजपाट के झंझट से हमको मुक्त कीजिए। आज नारद कहते हैं, एक जन्म तो माता पिता से होता है, वो तो सबका होता है, लेकिन दूसरा जन्म होता है गुरु से और शास्त्र की शिक्षा से। उस जन्म जिसका वो जन्म नहीं हुआ है वो तो बेकार पशुवत पहला जन्म है। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में द्विज शब्द का उपयोग होता है, द्विज कहते हैं दो जन्म, द्विज का मतलब दो जन्म। और दांत को भी द्विज कहते हैं, पहले दूध वाले दांत फिर पक्के दांत, इसका नाम भी द्विज है। तो दो जन्म कौन सी है, पहले जमाने में बच्चा पैदा होता था माता पिता का एक तो जन्म हो ही गया ना, लेकिन 8 साल का बच्चा गुरु के पास स्कूल में भेजा जाता था, और 8 साल का ब्राह्मण का बच्चा जब गुरु को जाता था, 10 साल का क्षत्रिय 12 साल का वैश्य का बच्चा जाता था जब गुरु के स्कूल में, तो पहले वो यज्ञ करके यज्ञोपवीत डालता था, जनोई डालता था, उस दिन उसकी दीक्षा होती थी, तब उसका दूसरा जन्म होता था, गुरु पिता होता था और वेद माता होती थी। वो जब से संस्कृति समाप्त हो गई तब से जन्म जायती सर्व शूद्र संस्कारात भवती द्वेज, जन्म से तो सब शूद्र हैं और सभी उसी स्थिति में पड़े हैं, कोई भी द्वेज बनने को तैयार नहीं। वो शिक्षा दीक्षा का सारा वातावरण बदल गए। आज प्रजेताओं को ये उपदेश नारद ने दिया। प्रजेताओं का एक पुत्र मिर्षा से हुआ, उसका नाम हुआ दक्ष। ये वही दक्ष है जिसने शंकर का अपराध किया, शंकर ने गर्दन काटा, फिर वापस बकरे का गर्दन लगाया। आज फिर बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद, शंकर के अपराध से मुक्त होकर 10 प्रचेताओं का पुत्र दक्ष बन के आया है। और प्रचेताओं की कथा में एक विशेष बात ये लिखी है, जो इसकी कथा सुनेगा उनके भाइयों के अंदर हमेशा प्रेम रहेगा, 10 हमेशा साथ रहे, कभी आपस में झगड़ा उन्होंने नहीं किया। तो ये कथा हमको प्रेम से साथ रखने के लिए है। यहां 4th स्कंद पूरा होता है, 5वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 5वें स्कंद में स्थान का वर्णन है। स्थान भागवत के 10 विषय पहले आपको दूसरे दिन बताए थे, भागवत में 10 विषय होते हैं, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा आदि। तो स्थान किसको कहते हैं, स्थान का मतलब भूगोल, खगोल, नरक आदि जो स्थान है, आकाश, ये सब, और विस्तार कितना बड़ा है, कितनी बड़ी ये दुनिया है। तो ये जो स्थिति है किस में है, भगवान के अंदर सारी स्थिति है इन चीजों की। इसलिए दूसरा शब्द स्थान के लिए भागवत में है वैकुंठ विजय। वैकुंठ विजय का मतलब ये भगवान के अंदर है, भगवान के द्वारा है, इसलिए इसको वैकुंठ विजय कहते हैं। और इसमें 26 अध्याय हैं। ये 26 अध्यायों का 5वां स्कंद है। इस स्कंद की शुरुआत कैसे होती है, द्रु वंश चला। द्रु किसका बेटा था, कल आपको बताया था, द्रु किसका बेटा, मनु, मनु का बेटा, 2 मनु के बेटे 3 बेटियां। माता जी कल आपको बताई थी मनु की 3 बेटियां 2 बेटे, मनु खुश। देवहूति की 9 बेटियां 1 बेटा, वो खुश। बोला था ज्यादा कन्या होने से पहले लोग परेशान नहीं होते थे। तो दूसरा बेटा मनु का, द्रु का वंश तो समाप्त हुआ आके यहां, अब दूसरा वंश, दूसरे बेटे, प्रियव्रत दूसरे बेटे का नाम है, मनु के, स्वयंभू मनु के दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। जिसका, जिसको व्रत अपना प्रिय हो, कैसा व्रत प्रिय हो, अपने गुरु भक्ति का व्रत उसको बहुत प्रिय था, कौन था प्रियव्रत का गुरु? नारद। नारद प्रियव्रत का गुरु था और नारद ने ऐसी शिक्षा दी। नारद की शिक्षा हमेशा ऐसी होती है कि संसार में मत फंसो, साधु बन जाओ। नारद की शिक्षा है ही एक, दूसरी है ही नहीं उसके पास। जिसको भी शिक्षा देता है यही शिक्षा देता है। आज प्रियव्रत को जाके मनु कहने लगा, बेटा अब तो मैं भी जाके तपस्या करूंगा, वन में जाके जन्म सार्थक करूंगा, आप राज करो। बोला मैं राज नहीं करूंगा। मनु गए अपने पिता ब्रह्मा के पास, बोला पिताजी आपकी आज्ञा से मैंने तो संसार का विस्तार किया, मेरा बेटा मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है प्रियव्रत। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए मनु के साथ, नारद जी बैठा है, नारद का शिष्य प्रियव्रत बैठा है। आते ही ऊपर से ब्रह्मा जी ने अपने पोते को बोला, बेटा इस संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे बैल के अंदर नाक में रस्सी डाल के मालिक जहां ले जाता है वहां जाना पड़ता है ना, ऐसे हम देवता भी और ये मानव भी और ये सब जो है ये भगवान के काल रूपी रस्सी के अंदर, प्रकृति के अंदर उनको वैसे ही चलना पड़ता है जैसे वो चलाता है। इसलिए तुम्हारे को आज्ञा का पालन करके राज करना चाहिए। आज प्रियव्रत कहता है मनु, स्मृति का आचार्य है मनुस्मृति, ब्रह्मा वेद का आचार्य है, वेद पहले ब्रह्मा को दिए गए हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। आज वेद के आचार्य और संहिता के आचार्यों की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म मान के प्रियव्रत ने अपने गुरु नारद से पूछा, गुरुजी क्या करना चाहिए? बोला बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज विवाह हुआ प्रियव्रत का, प्रियव्रत राजा बने, लेकिन शिक्षा बहुत उत्तम ग्रहण की हुई थी पहले गुरु से। आज प्रियव्रत कैसा राजा है, रात हो जाती है, अंधकार हो जाता है हमारे देश में, अपने रथ के ऊपर चढ़े, रथ का इतना प्रकाश के रात को दिन में बदल दिया, काल के ऊपर विजय प्राप्त की। आपको ऐसे लगता है रात को दिन कर दिया तो जरा परेशान मत होइए। आजकल क्रिकेट खेलने वाले 22 आदमी रात को दिन करते हैं कि नहीं करते? रात को दिन करके बड़ी बड़ी लाइट लगा के खेल खेल सकते हैं। जब ये आदमी रात को दिन कर सकते हैं तो महाराज प्रियव्रत मनु का बेटा रात को दिन अपने रथ से करे तो कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आजकल रात होती है कि रात को दिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग? तो ये कोई मुश्किल नहीं समझना। और देश के ऊपर विजय प्राप्त की, महाराज प्रियव्रत ने अपने रथ के चलने से 7 समुन्दर बन गए, रात के पहियों के निशान से 7 समुन्दर बन गए प्रियव्रत से। और आध्यात्मिक ज्ञान में तो इतना प्रगतिशील था नारद का शिष्य था, अपनी आत्मा को भी भगवत प्राप्ति के लिए उस रास्ते के ऊपर चल पड़ा। प्रियव्रत तो अपने समय के ऊपर अपने पुत्र अग्निधर को राज देकर और तपस्या करने के लिए चला गया। महाराज अग्निधर ना, हाँ अग्निधर प्रियव्रत का पुत्र उस वक्त उत्पन्न हुआ जब प्रियव्रत ने विवाह किया था। उसके लिए इस पुत्र के अंदर भोग की कामना ज्यादा थी, भगवान प्राप्ति से भोग का इच्छा ज्यादा थी। राजा तो बहुत अच्छा बना, प्रजा का प्रेम से पालन किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि ये हमारा पोता विवाह करना चाहता है। अग्निधर तपस्या करने के लिए चले गए और वन में तलहटी में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर अप्सरा को भेजा। अप्सरा को देखने से इतना आकर्षित हुआ महाराज अग्निधर कि उसको ऋषि समझ के और पुरुष से जैसे बात करें ऐसे बात करने का, आप कहां से पधारे हैं महाराज, आपका आश्रम कहां है, आप जलपान कीजिए, आप कंदमूल खाइए। और फिर उससे श्रृंगार रस कहते हैं प्रेम की भाषा से दूसरे को बस में कर लेना। आज अग्निधर ने श्रृंगार भाषा से उठा, आपके ये कमान तो हैं, तीर किसको मारोगी, ये भ्रुएं आपकी कैसे सुंदर हैं। और फिर उससे विवाह कर लिया अग्निधर ने, विवाह कर लिया उस अप्सरा के साथ और उसको हुआ एक पुत्र उत्पन्न महाराज नाभि। लेकिन अग्निधर मुक्त नहीं हुआ, अग्निधर चला गया उस अप्सरा के लोक में और भोग करने के लिए, क्योंकि भोग उसका पूरा नहीं हुआ था। लेकिन वहां से फिर ऊपर भगवान की भक्ति करके पहुंच गया और महाराज नाभि के अंदर प्रिय व्रत का जो गुरु के ऊपर श्रद्धा थी, आज इसकी ब्राह्मणों के ऊपर बहुत श्रद्धा है। महाराज नाभि को पुत्र नहीं है, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है और यज्ञ से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान को प्रार्थना करके ब्राह्मण कहते हैं, हमारा यजमान आप जैसा पुत्र चाहता है। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो और कोई होता नहीं है, मैं ही आपके यजमान का पुत्र बनने को तैयार होता हूं। नाभि के घर में भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। तो यहां पांचवें स्कंद में ऋषभ देव भगवान के अवतार का वर्णन है और ऋषभ देव का अवतार हुआ। बहुत सुंदर थे ऋषभ देव। नाभि के घर में भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन नाभि घर छोड़ के राज देकर ब्राह्मणों के हवाले कर दिया अपने बेटे को कि आप इसका पालन पोषण करके राजा बनाना। और नाभि तो नर नारायण की जाके तो उपासना करके और बद्री का आश्रम में भगवत प्राप्ति के लिए चल गया। भगवान घर में आया, ये दूसरा उदाहरण है। कपिल देव घर में आया, कर्दम मुनि चला गया वन में। आश्चर्य है, लेकिन ये परिपाटी मिलती है भागवत के अंदर। ऋषभ देव घर में आया, नाभि तपस्या करने चले गए, लेकिन ऋषभ देव राजा बने, भगवान के अवतार थे। उस वक्त भगवान का अवतार यज्ञ इंद्र के स्थान के ऊपर था। आपको बताया था यज्ञ किसका बेटा है, याद है किसी को? कल बताया था। मनु की तीन बेटियों का नाम बताओ, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का बेटा कपिल देव, आकुति का बेटा यज्ञ, आकुति और रुचि प्रजापति का बेटा यज्ञ। ये भगवान का अवतार है यज्ञ। भगवान उस वक्त इंद्र के योग्य कोई आदमी नहीं था, तो यज्ञ भगवान इंद्र बने हुए थे। इस यज्ञ इंद्र ने बरसात करना बंद कर दी ऋषभ देव के राज में। अरे, एक भगवान का अवतार ऋषभ देव, एक भगवान का अवतार यज्ञ, एक भगवान ने दूसरे भगवान के देश में बरसात बंद कर दी, क्यों? इसलिए कि यज्ञ इंद्र यज्ञ को अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ करना था, तो अपने जामाता का लोगों को प्रभाव दिखाना था कि कितना बलवान और शक्तिशाली है, और परीक्षा लेनी थी अपने जमाई की। पुराने जमाने में शादी होती थी तो लड़के की परीक्षा ली जाती थी अच्छी तरह से, और लड़की की भी परीक्षा ली जाती थी। एक आलू देते थे, एक चाकू देते थे, बोला इसको छीलो लेकिन छिलका कहीं नीचे न गिरे, पूरा गोल का गोल कटे, और जो गोल छिलका पूरा आलू का काट के नीचे उतार सकती थी उस लड़की को बुद्धिमान और काम करने वाली समझदार सुशील माना जाता था। चार पांच टुकड़े नीचे गिरते थे, बोला इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया नहीं। ये पुराने में ये देखते थे पुराने के आलू का छिलका उतारो और एक मित्रे का छिलका और मुश्किल होता है, नहीं तो चिक्कू का छिलका पूरा उतारो, देख लो कौन लड़की ठीक तरह से उतार सकती है, जाके अभ्यास करके देख लेना घर। नहीं, ये समझदारी की बातें हैं। पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग ऐसे देखा करते थे। तो आज ऋषभ देव के वहां बरसात नहीं रहे हो रही है, उसने अपने योग बल से बरसात कर ली। ऋषभ देव का विवाह जयंती के साथ हुआ। ऋषभ देव तो 100 पुत्र उत्पन्न किए, ऋषभ देव के 100 बेटे। भगवान का अवतार है, पूरी सृष्टि भगवान बना सकता है, 100 बेटे उसके हो जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? हम सबको किसने पैदा किया? भगवान ने ही तो पैदा किया है ना। जब भगवान सारी दुनिया पैदा करता है तो 100 बेटा उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। आज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है महाराज भरत। इतना प्रतापी है, इतना महान शक्तिशाली है कि उसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश को अजनाब वर्ष बोलते थे, इस देश का पहले नाम था अजनाब वर्ष। जब से महाराज भरत इस देश के राजा बने तब से इसका नाम हुआ भारतवर्ष। एक महाराज भरत, 9 और राजा हुए बहुत बड़े, 10 पुत्र महाराज ऋषभ देव के क्षत्रिय शासक बने, 9 त्यागी वैरागी नव योगेंद्र बने, वो आएंगे 11वें स्कंद में, निमि महाराज को उपदेश नारद जी बताएंगे तब। 9 बने व्रत साधु सन्यासी और 81 बने ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराने वाले। अब यहां एक बहुत बड़ा आश्चर्य का अनुभव मिलता है। एक ही राजा, उसके 10 पुत्र क्षत्रिय, 9 व्रत महात्मा और 81 ब्राह्मण। तो इसका अर्थ यह है कि जन्म से तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। बिल्कुल सिद्धांत यहां ठीक दिखाई दे रहा है कि एक ही बाप के 10 राजा हो गए और 81 ब्राह्मण हो गए, ऐसे कैसे समझ हो सकता है? अपने कर्म के अनुसार वर्ण बनता है, जन्म से वर्ण तो नहीं बनता है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये 4 वर्ण बनाए, चतुर्वर्ण एम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, ये वर्ण किसी आदमी ने नहीं बनाया, हमने उसको बिगाड़ा है अच्छी तरह से। तो आज महाराज भरत ने, महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को लेकर ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त किसको कहते हैं? गंगा और जमुना के बीच के टुकड़े को ब्रह्मवर्त कहते हैं। और वैसे आजकल कानपुर में जहां बिठूर है और बिठूर को ब्रह्मवर्त मानते हैं, उस जगह पे स्थान है कि ये ब्रह्मवर्त है ये जगह। वहां बहुत ऋषि ब्राह्मण बैठे हुए थे तीर्थ स्थान के ऊपर, उन सबके बीच में अपने 100 बेटों को बिठाकर ऋषभदेव ने उपदेश दिया, अपने बेटों को उपदेश दिया। इतना अद्भुत उपदेश है, पहला तो उपदेश में यही कहा कि बेटा इंद्रियों का सुख नीच से नीच सुअर की योनि में भी मिलता है, गुड भुजान। अगर असली सुख चाहिए, दिव्य सुख चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे बेटो तपस्या करना। तुच्छ इंद्रियों का सुख तो हर जोनी में मिलता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का सुख चाहिए तो बेटो तपस्या करना। ये ऋषभदेव की बहुत बड़ी शिक्षा अपने बेटों के प्रति, सब लोग सुने, उनके बीच में ये बताया ताकि बेटों को आगे हमारे जाने के बाद भी कोई कहे कि तेरे पिता ने कहा था तपस्या करो, तुम भोग में क्यों लिप्त हो रहे हो। और फिर ऋषभदेव ने कहा एक और बड़ी अद्भुत शिक्षा है, उसको राजा होने का अधिकार नहीं है जो अपनी प्रजा को भगवत भक्ति के रास्ते के ऊपर नहीं लगा सकता है, उसको स्त्री को पत्नी करने का अधिकार नहीं है जो अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता है, बेटे को बेटा उत्पन्न करने का पिता को अधिकार नहीं है अगर बेटे को सतमार्ग के ऊपर नहीं चला सकता, और गुरु को शिष्य लेने का अधिकार नहीं है अगर शिष्य को भगवान के पास नहीं ले जा सकता है। इन चारों को अधिकार नहीं दिया है जब तक ये भगवान के मरण चर जन्म मरण से मुक्त न कर सके। ये ऋषभदेव की शिक्षा बहुत अद्भुत है। आज महाराज ऋषभदेव राज अपने बेटे भरत को देकर और अवधूत के रूप में घर छोड़ के निकले हैं। अवधूत उसको कहते हैं, अवधूत का मतलब जिसको लोग दूर से देखें तो पागल समझे, लेकिन हो बड़ा भगवान के भक्ति में निपुण, लेकिन लोगों को पागल जैसा नजर आए, फिर भी इतने सुंदर थे ऋषभदेव के लोग उसको देखते थे। तो उन्होंने जाकर एक जगह पड़े रहे अजगर वृत्ति से, कुछ मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो यहां से उठेंगे भी नहीं, मलमूत्र भी वाइन त्यागते थे, लेकिन भागवत लिखती है 8-10 किलोमीटर में सुगंध चारों ओर फैली होती थी। फिर वहां से निकल के दक्षिण भारत में कुछ कल के स्थान के ऊपर चले गए ऋषभदेव महाराज, और वहां आग लगी वन में पत्थर डाल के मुंह में ऋषभदेव महाराज ने प्राण त्याग दिए। वहां सिर्फ ये भगवान ने बड़ी तपस्या करके सिखाया कि अंत समय मुख से कोई संसार की बात न निकले। सिद्धियां खड़ी हो गई, आगे हाथ जोड़कर ऋषभदेव को कहा आप हमको स्वीकार कियो। ऋषभदेव ने कहा सिद्धियों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूं, मन इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ा तो भगवान की भक्ति से भटक जाएगा। भगवान से ऋषभदेव सिद्धियों को स्वीकार करें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मन हमारे को हमेशा धोखा देता है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मन वश में नहीं है तो बड़ा शत्रु है, जिसका मन वश में है वो सबसे बड़ा मित्र है। मन ही एक है जो बंधन का कारण है, मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। जैसे एक ही चाबी होती है, ताले में एक तरफ घुमाओ तो ताला बंद होता है, दूसरी तरफ घुमाओ तो खुल जाता है, ऐसे एक ही मन है। साधु संघ में भगवान की भक्ति में लगा तो संसार के बंधन खुल गए, और संसार की तरफ चला गया भोग में लगा तो हमेशा के लिए बंध गया। एक ही मन है, भगवद गीता में तो उसको लिखा है, शत्रु भी यही मित्र भी ये। अब महाराज भरत ने बहुत बड़ा सुंदर राज किया, राज करने के बाद सुख सबको दिया और इतना महान राज किया कि देश का नाम भारतवर्ष हो गया। फिर भरत महाराज ने अपने जन्म को सफल करने के लिए तपस्या करने का संकल्प किया, गंडकी के किनारे के ऊपर जाकर स्नान करके 3-4 दिन में भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी। लेकिन एक त्रुटि हो गई, त्रुटि क्या हो गई। एक दिन बैठे हुए हैं नदी के किनारे, देखते हैं कि एक गर्भवती हिरण, पीछे से शेर धाड़ा, हिरण पानी के ऊपर से कूदी और कूदते ही बच्चा नीचे गिर गया। हिरण तो उधर दूसरी तरफ गई, प्राण त्याग दिए। बच्चा अकेला देखकर महाराज भरत के हृदय के अंदर करुणा और दया की उत्पत्ति हुई। इस छोटे हिरण के बच्चे को कौन पालेगा। दया की वृत्ति सतोगुण की वृत्ति जरूर है, लेकिन बाहर अंग वृत्ति है, भक्ति अंतरंग है। आज उस बच्चे को पकड़ के लाए ऋषभदेव, उसको दूध पिलाने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे, दया करके उसको बचा लिया तो ठीक है, बचाने के बाद उसको पकड़ के रख लिया तो दया वाली सतोगुण की वृत्ति बंधन का कारण बन गई। सतोगुण ऐसे बंधन का कारण होता है। आज उस हिरण के बच्चे में इतना मोह महाराज को हो गया कि भक्ति से ज्यादा, भगवान से ज्यादा हिरण का बच्चा याद रहे। एक दिन रात को हिरण का बच्चा आया नहीं, उसको ढूंढते हुए महाराज उसी के ध्यान के अंदर किसी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरे खाई के अंदर, और प्राण त्याग के समय हिरण का ही स्मृति रही, दूसरे जन्म में हिरण बने। लेकिन सीखने की बात, दो बातें सीखने की मिलती है भरत चरित्र से। एक तो पुनर्जन्म होता है, और दूसरा पुनर्जन्म होता है जो अंत समय में मति होती है उसके आधार के ऊपर होता है। अंत में हिरण का ध्यान किया तो हिरण का शरीर मिला। तो एक तो पुनर्जन्म होता है और दूसरा पुनर्जन्म होता है अंत मति के हिसाब से। तो अंत में किसका ध्यान करना चाहिए, ये बहुत बड़ी परीक्षा है जो सबको देनी पड़ती है। अंत में जिसके मुख से गोविंद का नाम निकल गया, वो समझ लो कि संसार सागर में पास हो गया। अंत में जिसको संसार याद आ गया, समझ लो कि सब कुछ यही छूट गया। पर सारा किया हुआ काम अंत समय में परीक्षा के समय काम आता है, और वो परीक्षा कितना छोटी होती है इसका उदाहरण कभी हमने आपको दिया है। कभी आप फोटोग्राफर के पास फोटो निकालने गए हैं, जब आप जाएंगे फोटोग्राफर क्या कहेगा, बैठो, ठीक बैठ गए, मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ, उस वक्त वो बटन दबाएगा। जब वो बटन दबाएगा उस वक्त समझो मच्छर आपके नाक में घुस जाए, मैसे कर दिया आपने और उसका बटन दब गया। अब जब आपका फोटो आपको मिलेगा तब कैसा होगा, और आप उसको कहोगे कि मेरा फोटो बिगाड़ दिया आपने, वो कहेगा कैमरा कैसे बिगाड़ेगी, तुम्हारा जैसा मुंह होगा ऐसा निकला ना। तो अंत समय जो हमारी स्थिति होती है वैसी हमको बनना पड़ेगा। अब मच्छर को किसी ने कहा तो नहीं कि तुम नाक में घुसो, लेकिन उस वक्त मुंह हमारा चेहरा बिगड़ गया, हम उसको मानते नहीं हमारा, लेकिन है तो हमारा ही। ऐसे अंत समय में किसका ध्यान हमारा होता है वही हमारे जीवन में, वहां ही हमको जाना पड़ता है। और तीसरी शिक्षा क्या मिलती है, तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि भगवान की भक्ति की हुई हम नीचे गिर के हिरण के शरीर में जाए तो भी भगवान की भक्ति हमारी बेकार नहीं जाती। वहां भी हिरण के शरीर के अंदर जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की सारी भक्ति याद थी। वहीं से वापस पुनः आश्रम के पास हिरण आया, उधर रह के जब हिरण का शरीर त्याग दिया तो ब्राह्मण के घर में दोबारा जन्म हुआ, तीसरा जन्म। आज ब्राह्मण के 10 और पुत्र भी हैं, लेकिन ये ऐसा बेटा है जो कुछ बोलता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, जड़ जैसा है। जड़ कहते लकड़ी को, तो इसका नाम हो गया जड़ भरत। बाप 10 साल इसको, बाप ने 6 महीने गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण है, बोलता ओम भूर, बोला ओम गो अम स्व, बस कुछ 6 महीने में गायत्री मंत्र नहीं सीखा। पिताजी बोले बेटा जब शौचालय से होके आओ तब हाथ धोना, वो उसके बिल्कुल उल्टा करे, पहले हाथ धोए फिर जाए बाथरूम के अंदर। वो कैसे क्यों करे, बोला हमें किसी की बात मानूंगा नहीं, फिर मैं फंसना नहीं चाहता हूं दुनिया में, एक बार मैं पहले फंस चुका हूं, अब ये काम मेरे को नहीं करना। पिताजी ने बड़ा प्रयास किया, पिताजी के तो प्राण निकल गए। अब तो 10 भाई कहते हैं ये काम कोई नहीं करता है, खाता है रात में बैठता है, सिर्फ खाने का ही काम करता है। तो जल्दी वो जो बचा हुआ नीचे लगा हुआ चावल जला हुआ वो उसको खाने को दें, उसको भी खा जाए, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जाओ गैया चला के हो गैया चलाने चला जाए। गैया चला रहा है, एक बार चोरों का सरदार, डाकुओं का सरदार, देवी की उपासना करता हुआ कहता है किसी आदमी की बलि देनी है। इसको देखा है तो बड़ा रुष्ट पुष्ट, पकड़ के जड़ भरत को ले गया और ये चुप करके ऐसे साथ चला गया जैसे बुलाया। उधर ले जाके इसको नहाया, स्नान कराया, अच्छी तरह से पानी डालने बैठा है, अच्छी तरह से धो रहे हैं, धोने दो, भोजन दिया, खा लिया। अब पकड़ के देवी के सामने बलि के लिए तैयार होके तलवार निकाली डाकू के सरदार ने, जड़ भरत को तो कोई भय नहीं था, लेकिन माता काली को, अपने भक्त को देखा कि ये मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मां मूर्ति से काली निकली, तलवार उसी डाकू के हाथ से लेके पहले उस डाकू को मारा, फिर सारे डाकू को मारा। तो आज ये दुर्गा देवी बता रही है, भगवान के भक्त की रक्षा मैं करती हूँ, मेरा भक्त चाहे वो मुझे कितना भी पूजा करे, लेकिन भगवान के भक्त का मैं अपमान नहीं देख सकती। जड़ भरत तो यहां से जीवित वापस लौट के आए, देवी मां ने उन सबको मार दिया, उसके अपने डाकुओं को जो उसके भक्त थे। अब एक दिन की बात है, सिंध देश का और सुवेर देश का राजा रघुगण, पालकी के अंदर चार उसको उठाने वाले कहार है, पालकी वाले ले जा रहे हैं गंगा सागर। एक पालकी उठाने वाला थक गया, बीमार हो गया, आदमी चाहिए पालकी उठाने के लिए। इसको देखा अच्छा खासा तकड़ा मोटा, बुला लिया, बोला पालकी उठाओ, उठा ली। लेकिन ये नीचे देखे माकोड़ी आ रही है तो पांव उधर रखे, फिर चींटी आ रही है पांव उधर रखे, तो ऊपर पालकी हिले। जड़ भरत बोलते कैसे ठीक नहीं चल रहे हो, मुझे धक्के आ रहे हैं, कौन है ऐसे? तीन बोलते हम तो महाराज बड़े एक्सपर्ट है, पहले से पालकी उठाते आ रहे हैं, ये एक नया आया है। अरे तुम ठीक चलो, फिर आगे जाए, फिर पालकी हिले। कभी पालकी में चढ़े आप लोग? कभी बद्री का आश्रम नहीं, अब कभी गंगोत्री नहीं, जमनोत्री, जमनोत्री और केदारनाथ में पालकी चार आदमी उठाते हैं, और बरसाना जाते हैं तो दो आदमी पालकी उठाते हैं। दो वाली पालकी में खतरा कम है, लेकिन चार वाली पालकी को हमने देखा है, वो जब चलते हैं ना जैसे घोड़े के चार पांव चलते हैं ना, ऐसे बिल्कुल एक उनका जो है टाइम ऐसा मिला होता है, सिंक्रोनाइज चलते हैं। एक का पांव भी थोड़ा टेढ़ा हुआ तो ऊपर वाला समझेगा अभी गया ग्राम में, नीचे जमुना में। हम तो चढ़ के उसके ऊपर देखा है पालकी के ऊपर, और पालकी के ऊपर चढ़ के हम जमनोत्री गए और फिर केदारनाथ गए, और हमको उठाने वाले चार के बजाय हमने आठ किए थे, लेकिन फिर भी गिरे। और वो गिरे और हमने देखा था कि उसका पांव जब थोड़ा टेढ़ा चलता है तो हमारा ऐसे हृदय करता है कि नीचे वाली वो जो नदी है उसके अंदर अभी गया। तो ये एक पालकी वाले का पांव थोड़ा टेढ़ा हुआ नहीं, ऊपर वाले का दिमाग हिला नहीं। अब कभी पालकी में चढ़ के देखो तब पता लगेगा। अब महाराज रघुगण को क्रोध आया, बोला तुम तब दुबले पतले हो, तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुमसे चला नहीं जाता। आज तक कभी नहीं बोला था, लेकिन आज जड़ भरत कहता है हां किसको कह रहे थका हुआ कौन है, बीमार कौन है? शरीर, ये मेरे शरीर को तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूं तुम मुझे जानते हो, ये शरीर थका हुआ है, ये शरीर बीमार है, मैं तो ये शरीर नहीं हूं। तुम अपने आप को महाराज समझते हो सिंधु के, और इनको काम इनको बगैर तनख्वाह के बगैर किराए के उठा के जाते हो, इनका अपना इनका तुम तो, 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 इनको तनख्वाह भी नहीं, वेतन भी नहीं देते हो, कौन इसका पाप भोगेगा? कौन मैं महाराज हूं सिंध का? तब तो जड़ भरत ने देख के कहा तुम सिंध के महाराज हो, सिंध कहां है? बोला भारतवर्ष में। बोला भारत का नाम कैसे पड़ा? बोला महाराज भरत से। बोला वो मैं हूं। अब तो महाराज रघुगण नीचे उतरे पालकी से, महाराज भरत के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं अंधकार में हूं, मैं तो अभी तक शरीर को ही सब कुछ मान के राजा अपने आप को मानता हूं। अब रघुगण को उपदेश दिया किसने? जड़ भरत ने। महाराज जड़ भरत ने जो रघुगण को उपदेश दिया उसमें अंतिम श्लोक में बोला है कि भगवान की प्राप्ति न तो यज्ञ से होगी, न तप से होगी, न दान से होगी, केवल महत पद रज अभिषेकम। साधु महात्मा के चरणों की धूलि से जब अपने आप को धो लोगे तब तुम्हारे को भगवान की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ जिस रास्ते के ऊपर महात्मा चलते हैं उसके पीछे चलोगे ना तो उनके पांव से धूल उड़ेगी ना, तुम्हें पता लगता है कहां जाएंगे, और वो भगवान के पास जाएंगे तो तुम उसके पीछे जाओगे तो पहुंच जाओगे। धूल पांव के उड़ी के में स्नान करने का मतलब उनके पीछे चलना। अभी कोई आदमी किसी आदमी के पीछे जाओगे, आदमी को छोड़ो, आजकल आपने देखा है कभी गाड़ी कोई मिट्टी से गुजरती है पीछे वाली गाड़ी के ऊपर सारी मिट्टी आती है कि नहीं आती है? ठीक ऐसे ही जब साधु चलते हैं रेती में तो धूल उड़ती है और पीछे वाले के ऊपर लगेगी। ये धूल ही का ये सिद्धांत आया कहां से? पुराने जमाने में एक शब्द हुआ करता था गोधूली। अभी भी विवाह के समय पंडित जी कभी कहते हैं गोधूली के समय विवाह है। गोधूली किसको कहते हैं? सायंकाल का समय जब गाय घर आती है ना, जब गाय वापस आती है तो उसके खुर से धूली उड़ती है, तो धूली उड़ती है, ये गोधूली का शब्द आया कैसे? ये गोपियां सायंकाल को सारा दिन सुबह कृष्ण को जाते हुए देखती थी, लेकिन शाम को कृष्ण के दर्शन के लिए दूर से गोधूली दिखती थी, गाय नहीं दिखती थी, केवल धूली दिखती थी, बाहर खड़ी हो जाती थी, गाय की धूली उड़ रही है, गाय के पीछे कृष्ण आएगा, ध्यान कृष्ण में होता था तो गोधूली के पीछे कृष्ण को देखने की भावना होती थी। तो साधु की धूली का स्नान करने का मतलब साधु कहां जाएगा? भगवान की भक्ति करने जाएगा, हरि हरि कथा करने जाएगा, उसके पीछे जाओगे तो आपको भी भगवान मिल ही जाएगा। तो ये जो शिक्षा है रघुगुण महाराज को दी हुई जड़ भरत की, कि साधुओं के सेवा के साधुओं का अनुगमन करने से, साधुओं की पीछे चलने से भगवान की प्राप्ति होना एक ही रास्ता है। और फिर जड़ भरत ने विशेष रूप से एक भवाटी कहते वन का उपाख्यान बताया, कि पहले जमाने में लोग वन के अंदर चले जाते थे, बहुत बहुत कीमती चीजें सस्ते भाव में लाके शहर में बेचा करते थे, लेकिन जब जाते थे बाहर तो भूल भटक के जाते, बाहर निकल नहीं पाते थे। बोला ये क्या बता रहे? बोला ये संसार सागर ऐसा है, एक बार जो इसमें आया यहां से निकलना बहुत मुश्किल है, जब तक कोई साधु संत महात्मा कृपा करके और बंधन मुक्त न करा सके तब तक यहां से निकलने का संभावना नहीं है। यहां ऐसे एक बात आपको बता दें कि जड़ भरत किसी को बोला नहीं, सिर्फ रघुगण से ही क्यों बोला? तब ऐसे भी कुछ महात्माओं का मानना है कि वो हिरण जो था जिससे बहुत प्रेम हो गया था महाराज भरत को, वो आज महाराज रघुगण बना था, और जड़ भरत को जो प्रेम था वात्सल्य उस हिरण के लिए, आज वो वात्सल्य प्रेम इस राजा के ऊपर आया, अब उसका उद्धार करने के लिए उसका मुख खुल गया, नहीं तो वो अपने किसी सगे संबंधी से भी नहीं बोला था। उसका उद्धार महाराज रघुगण का किया। यहां 15 अध्याय पूरे होते हैं, पांचवें स्कंद के 5 अध्यायों में पृथ्वी का वर्णन है, इस पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं इसके लोकों का वर्णन है, जो जो लोक है उनका वर्णन है, वहां भगवान विष्णु की सब जगह पूजा होती है। फिर 4 अध्यायों में तारामंडल का वर्णन है और 2 अध्यायों में नरकों का वर्णन है। ये तो वैज्ञानिक चीजें हैं, इसके लिए इससे इतना किलोमीटर वो दूर है, इससे इतना योजन वो दूर है, ये बात अब कहने से समझ में नहीं आएगी। लेकिन 6 स्कंद में प्रवेश करते ही परीक्षित महाराज पूछता है, सुखदेव गोस्वामी इतने सारे नरक में जाने वाले दुख भोगेंगे, आदमी दुख से बचे कैसे? ये प्रश्न पूछा जाता है। इन वर्षों में सिर्फ एक वर्ष का आपको समाचार थोड़ा सुना देते हैं। हम रहते हैं ये भारतवर्ष, जैसे एक बहुत बड़ा सोने का पर्वत है, चारों ओर 9 कमल के जैसे पत्ते होते हैं, ऐसे 9 कमल 9 वर्ष है, बीच में इलावर्त वर्ष है जहां भगवान शंकर रहते हैं पार्वती के संग में, और कोई पुरुष नहीं रहता है, बाकी सब वर्षों का एक एक का वर्णन है। इन वर्षों में केवल भारत वर्ष है जहां कर्म योनि है, जहां कर्म कर सकते हैं, बाकी 8 वर्ष में स्वर्ग लोक से गिरे हुए लोग जो स्वर्ग लोक से वापस आते हैं ना, 10,000 साल तक आनंद से रहते हैं, विवाह करते हैं, सुख भोगते हैं, कभी बीमार नहीं होते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। मरने से 1 साल पहले केवल 1 बच्चा पैदा होता है, कोई फैमिली प्लानिंग वालों को परेशान नहीं करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वो 8 वर्ष सुख शांति के हैं, लेकिन वहां स्वर्ग से आए हुए लोग रहते हैं। केवल भारत वर्ष जो है उसके अंदर कर्म किया जा सकता है। उन वर्षों में एक वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष, जहां हनुमान जी रहते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं। एक वर्ष के अंदर प्रहलाद जी नरसिंह देव भगवान की पूजा करते हैं, हरि वर्ष। तो हर एक वर्ष का वर्णन है, अब उसका समय तो है नहीं, लेकिन आगे चलते हुए सूर्य मंडल तारा मंडल इस सारे का वर्णन है। लेकिन ये वर्णन इसलिए है कि इनका ध्यान भी करोगे तो आपको दुनिया का ध्यान भूल जाएगा। इसका ध्यान करने से दुनिया का ध्यान भूल जाएगा। कोई आश्चर्य की चीज देखते हो तो दुनिया भूल जाती है ना। वो अपना एक मंदिर है यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में, राधा पार्थसारथी मंदिर, उसके अंदर एक बिजली के ऊपर चलने वाला भगवद गीता का दर्शन है, लेकिन उसके बाहर के हाल के अंदर एक इस स्टेज जितना बड़ा शेषनाग है, उसके ऊपर विष्णु जी सोए हुए हैं, भगवान विष्णु, और लक्ष्मी पांव दबा रही है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। वो एक विदेशी अंदर आया, टूरिस्ट ऐसे देखे, ओ माय गॉड, उसने देखा तो उसको सब दुनिया भूल गई, इतना बड़ा गांव। वो लड़का खड़ा बोला, ये गाड़ी है, यही भगवान है। तो इसको बोलते हैं कि जहां सब दुनिया भूल जाए किसी को, ऐसा आश्चर्य जब कोई देखता है तो भगवान दुनिया सब भूल जाती है। तो ये देखा जाए कि सूर्य रोज उगता है, सबको प्रकाश देता है, ये तो भगवान की एक आंख है, केवल एक आंख है, और भगवान की ये आंख खुलती है तब दुनिया सब जागती है। ये आंख भगवान की बंद होती है तो दुनिया सब चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। तो ये सारा इसका ध्यान करने से केवल, वैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हैं संध्या वंदन में, इस मंत्र में किसका ध्यान करते हैं? भूर भुव स्व, ये क्या है, लोक है सारे, भूर लोक भुव लोक स्व लोक सविता, सूर्य है, इसी मंडल की तो उपासना करते हैं, और किसका करते हैं? इन सबके पीछे भगवान है, उसका ध्यान इसके अंतर्गत किया जाता है। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न के नरक से बचे कैसे, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित होता है। सुखदेव महाराज के इस प्रश्न से संतुष्ट न होकर सुखदेव परीक्षित महाराज कहते हैं पहले पाप करे, फिर परीक्षित का प्रायश्चित करे, फिर पाप करे, तो फायदा क्या हुआ? हाथी का तरह स्नान करके नदी से बाहर मिट्टी में लेटे तो ये कुंजर स्नान से क्या लाभ होगा? तब सुखदेव गोस्वामी कहता है ज्ञान प्राप्त करने से आदमी पाप से मुक्त होगा। बोला सब ज्ञान तो नहीं प्राप्त करेंगे, आप लोग यहां सब बैठे हैं, कितनों ने पढ़ा है भगवद गीता, कितनों ने वेदों का ना वेद पढ़ा है, ऋग्वेद कितनों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, इसका मतलब आप पाप से मुक्त नहीं हो सकते क्या? ये जब प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा कि ज्ञान से भी सबका उद्धार नहीं हो सकता, पाप का प्रायश्चित करने से भी लोग नरक से नहीं बच सकते, तो क्या करना चाहिए? आज सुखदेव कहते हैं ये परीक्षित भगवान का भक्त है, इसको वो रास्ता बताना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए हो। तब सुखदेव महाराज कहते हैं पुरातन पुरानी एक कथा बताता हूं, हमने भी अगस्त ऋषि से सुनी थी, और कन्या कुबज जिसको आजकल कनौज कहते हैं, जहां का इत्र बहुत मशहूर है, वहां एक ब्राह्मण रहता था। इस ब्राह्मण की कथा शुरू करें उससे पहले ये बता दें, छठा अध्याय छठा स्कंध पोषण है। पोषण, पोषण का मतलब क्या है? भगवान जो अपनी सृष्टि करता है उसका पालन पोषण भी स्वयं करते, जैसे माली बगीचा लगाता है ना, तो उसके अंदर छांटी भी करता है और पानी भी देता है। जैसे डॉक्टर वैद्य होता है, ऑपरेशन करके कोई चीज निकालता भी है और कुछ पौष्टिक पदार्थ देता है दवाई, ताकि उसका संवर्धन भी हो। तो भगवान पोषण करता है, किसी को रख के किसी को मार के, लेकिन करता सबका पोषण है। पोषण के इस छठे स्कंध में तीन अध्यायों में भगवान के नाम के द्वारा कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करता है, तीन में नाम के द्वारा पोषण, 14 अध्यायों में भगवान अपने रूप रस गंध नाद आदि से अपने भक्तों का कैसे पोषण करता है, कितने हो गए? 14 और 3। 2 अध्यायों में पूजा के द्वारा भगवान पोषण करता है, 19 अध्याय है इस छठे स्कंद में। 3 अध्यायों में जो पहली बात है वो है कन्या कुबज में ब्राह्मण जिसका नाम अजामिल, ब्राह्मण है, वेद पाठ करने वाला है, यज्ञ करने वाला है, घर में सालंग्राम की पूजा करता है, नारायण की सालंग्राम सिंहशिला घर में है। हर ब्राह्मण को पहले हर गृहस्थी को सालंग्राम घर में पूजा की करना सरल थी और करनी थी, दूध और तुलसी केवल चढ़ाने से सालंग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप प्रसन्न हो जाता है। एक दिन की बात है, अजामिल लकड़ी लेने के लिए गया वन में यज्ञ के लिए, किसी वेश्या के साथ किसी लंपट को आलिंगन करते देखा, मन को रोकने का प्रयास किया लेकिन मन बस में नहीं आया और अजामिल पथ भ्रष्ट हो गया। वन के अंदर एक वेश्या को एक लंपट के साथ आलिंगन करके देखा, उस जमाने में अजामिल का पतन हो गया। आज तो शहर में हर एडवर्टाइज के बोर्ड के ऊपर सिर्फ लड़कियों की नंगी फोटो लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, जाके देख लो। हम मना नहीं कर सकते हैं इसको, हमारे अपने देश में, हमारे अपने नगर में, हमारे अपने बच्चों को पथ भ्रष्ट करने के लिए कुछ लोग ऐसे जितनी सारी एडवर्टाइज के बोर्ड है सब बदमाशी में लगाए कैसे देखे, किसी बीच के ऊपर आप घूम जाके परिवार के साथ जा नहीं सकते हो। चार महीने में मॉरिशस में था, एक दिन भी समुद्र के किनारे नहीं गया। सबने बोला चलो यहां आते हैं केवल समुद्र देखने आते हैं। मैंने बोला समुद्र देखने क्या जाए, वहां नंगे आदमी घूम रहे। अरे कपड़े कम पहनने से आदमी सुंदर होता तो कुत्ता बिल्ला गधा भी सुंदर लगता ना, कभी कपड़े पहने उन्होंने? कपड़े उतार के आदमी कभी सुंदर होता तो गधा कुत्ता बिल्ला सुंदर होना चाहिए ना। एक अजामिल का पतन हुआ था, लेकिन आज चारों ओर से ऐसा वातावरण बना हुआ है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में यहां आप अपनी दिल्ली में जाके देख लोगे, बाहर अपने बच्चों को देखोगे तो बड़ा दुख होगा। कितना पतन संस्कृति का हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि शास्त्र से हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, मर्यादाओं को हमने भुला दिया है। अजामिल का पतन हो गया, अजामिल ने अपने परिवार को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, विवाह किया उस वेश्या के साथ, हर दुनिया का पाप करना शुरू किया, चोरी डाका जो करना था वो करना शुरू कर दिया, और इतना भोग में लिप्त था कि 80 साल की उम्र में भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, तब तक भी काम का भोग था। लेकिन एक तो नारायण की शिला घर में थी, भगवान अपने भक्त को भटकने से समय समय के ऊपर बचा ही लेते हैं। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मातो भयात, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं एक बार अचानक भी कभी भगवान का नाम ले लिया हुआ, भक्ति की हुई है तो बड़े मुश्किल से कभी न कभी आपको वो आपका किया हुआ सत्कर्म बचा लेगा। और फिर कुछ साधुओं ने आकर अजामिल के घर में उसको कहा कि हमें तुमसे कुछ लेना नहीं है, हम तुम्हें कुछ देने आए हैं, और देने भी आपको ये आए हैं कि तुम अब मां। साधु ने सोचा कि ये अजामिल अब तो पाप कर्म में लिप्त हो गया है तो ब्राह्मण, इसको अब कहेंगे कि तुम राम राम जपो तो ये नहीं जपेगा, क्या करना चाहिए? बोला इसका भगवान का नाम तो इसको जपने का शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन पुत्र मोह के साथ मिलाकर कहते हैं तुम्हारे बेटे का नाम नारायण रख देना बस। अच्छा जी महाराज आप कहते हैं तो बेटे का नाम नारायण रख देते हैं। अब अजामिल बेटे को बोले नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण मेरा चप्पल लाओ, नारायण मेरा कपड़ा लाओ, सुबह शाम नारायण नारायण कर रहा है। इसलिए पहले जमाने में हमारे बच्चों के नाम भी ऐसे होते थे, नारायण गोपाल मुकंद माधव, अभी बच्चों के नाम कैसे, टीनो मीनू किटू पिटू है? इस नाम लेने से किसी का उद्धार होगा क्या? अरे नाम कितने सुंदर हुआ करते थे पहले जमाने में, नाम लेने में आनंद आता था। पिताजी का नाम किसी से पूछो क्या बोल, पहले जमाने में किसी को पिताजी का नाम पूछो क्या बोलता था, किसके बेटे हो? श्रीमान गोपाल जी का पुत्र हूं। अभी पूछे पिताजी का नाम क्या है, जीपे का बेटा हूं, जीपे का, जीपे है, बीके का बेटा हूं। अरे बालकृष्ण नहीं कहेगा, बीके का बेटा हूं, बाप को बैठ करके खा जाएगा। क्या हो गया है संस्कृति में, किसी का नाम भी ठीक लेने में शर्म आती है। पप्पा नहीं बोलती हैं लड़कियां, डैडी क्यों बोलती हैं, पप्पा क्यों नहीं बोलती हैं? नाराज मत होना, किसी ने मुझे, मैंने सुना था इसलिए कहता हूं, बोला पप्पा बोलने से लिपस्टिक खराब होती है, पप्पा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज अजामिल का अंतिम समय आ रहा है, पापी इतना है कि मारने के लिए जमदूत तीन गले में फांस जम डाला है, और भय के मारे अपने बेटे का याद आई नारायण ऐसे उच्चारण कर लिया। नारायण का क्या उच्चारण किया अजामिल ने, चार विष्णु दूत चार हाथों वाले, हाथ में शंख चक्र गदा लिया हुआ, कृत कुंडल मुगट पहने हुए वहां प्रकट हो गए, और आते ही पूछा यमदूतों से तुम्हें पता नहीं है कि धर्म अधर्म क्या है, क्यों इसको ले जा रहे हो? वह पापी है, देखो ये पाप का चिट्ठा हमको दिया है, ये पूरी इसकी लिस्ट है पाप की, चोपड़ी पूरी भरी हुई है इतनी बड़ी। विष्णु दूत कहते हैं आपको मालूम नहीं है एक बार भगवान नारायण का नाम लेने से सब पाप नाश हो जाते हैं। इसमें नारायण का नाम लिया ना, बोला आपने बेटे का लिया। बोला संसार में कोई नारायण नहीं है सवाय वैकुंठ नाथ के, सब नारायण दास हो जाएंगे। दुनिया में नारायण दास हो सकते हैं, नारायण केवल वैकुंठ नाथ है। और भगवान अपने नाम से इतना प्रेम करते हैं, उसका नाम आप किसी गलती से भी ले ले तब भी भगवान उस नाम की गलती को नहीं देखते। नाम आभास में भी वो अपना नाम मान लेते हैं और उस आदमी को मुक्त कर देते, निकलो यहां से। अब तो यम दूतों को वहां से खदेड़ के भगा दिया विष्णु दूतों ने। एक बार नारायण वो भी बेटे का नाम लिया, इतना बड़ा लाभ मिला। विष्णु दूत चले गए, लेकिन विष्णु दूतों का दर्शन और संग मिला और उनकी वार्तालाप सुना, अजामिल का दिमाग ठिकाने पे आ गया। अजामिल बोला आज केवल बेटे का नाम नारायण लेने से, मौत के भय से मैं बच गया हूं, तो अब तो नारायण का असली नाम लेने के लिए चला गया हरिद्वार और गंगा जी के तट के ऊपर बैठकर, और अजामिल भगवान का असल में नाम लेना शुरू कर दिया। तो ये भगवान का नाम जो आप अभी ले रहे हैं, ये इतना बड़ा शक्तिशाली है। एक बार हरे कृष्ण बोल दिया तो अंत समय में किसी वक्त ऐसा काम आएगा जब कोई संसार का न पैसा काम आएगा, न कोई संबंधी, न मित्र बंधु काम आएगा, तब ये भगवान का नाम हमारा साथी और सहाय बनेगा। एक आदमी इतना नास्तिक था, हरि नाम लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। घर वाले, मित्र बंधु बांधव, साधु संत चाहते थे एक बार भगवान का नाम ले ले तो इसका उद्धार तो हो जाएगा। एक महात्मा को कहा कि तुम ऐसे करो, इसको एक बार हरि नाम का उच्चारण करा दो ताकि इसका उद्धार हो जाए। अजामिल का उद्धार हो गया तो इसका भी होना चाहिए। अब इसने कहा कि इसको कहूंगा कि तू नाम राम लो तो नहीं लेगा। तो उसके घर के सामने ठेले के ऊपर हरी मिर्ची ले जाके खड़ा हो गया। बाहर निकला, बोला क्या है? बोला देख नहीं रहे हो? बोला ये दो। क्या बोलो, क्या दू? बोला हरी मिर्ची दो। बस बोला बस ठीक है, हो गया आप काम, अब काम हो गया। अब इस हरी मिर्ची के बदले में तुम्हें कुछ भी दुनिया में मिले मत लेना। मर गया, यमराज के पास गया। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पाप का इतना बड़ा चिट्ठा है, तुम नास्तिक, तेरे लिए नरक तो 26 कम है, हमने 5 और भी बनाए हैं, अब 31 हो गए हैं। लेकिन एक तुम्हारी, एक बार तुमने हरी बोला है, उसके बदले में जो फल लेना है ले लो, फिर जाओ नरक भोगो। बोला मैं कुछ भी नहीं लूंगा। महाराज ने बोला इसके बदले में कुछ नहीं लेना। अब तो परेशान होकर यमराज ने बोला, ब्रह्मा जी के पास पूछे कि हरी के बदले में क्या दूं इसको। ब्रह्मा जी के पास यमराज साथ लेके उसको गया, बोला पापी पहले नंबर का है, नरक का तो बिल्कुल इसके अंदर अधिकार इसका नरक का है, लेकिन एक बार हरी वो भी मिर्ची बोला है। बोला हरी के बदले में इसको क्या दें, हमारे बस में तो नहीं है, चलो शंकर जी से पूछें। बोले नाथ ने कहा विष्णु के पास चलते हैं। विष्णु के पास जब पहुंचे, विष्णु मुस्कुरा के कहते एक बार मेरे पास आ जाने के बाद कोई वापस तो यहां से जाता नहीं है, अब यहां ही आ गया है तो वैकुंठ से तो कोई वापस लौटा नहीं। वो जब अब आप जाइए अपना अपना काम कीजिए, इसको वैकुंठ में छोड़िए। तब उसने मुड़ के कहा यमराज को, ये हरी तो मेरे को मिल गया, मिर्ची तो वापस ले जाओ। तो ये मिर्ची कहने से भी कभी ही, हरी मिर्ची कहने से भी हरी अपने आप को भगवान अपना नाम मान लेता है। और ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है। भगवान आपकी गलती को नहीं देखता है, अपने नाम से बहुत प्रेम करता है। तो आज यहां अजामिल का उदाहरण हुआ। सिद्धांत सिर्फ ये है, एक बार भगवान का नाम लें तो सब पाप नाश हो जाएंगे जन्म जन्मांतर के, लेकिन फिर दोबारा पाप न करें। इसका अर्थ ये है कि मरने से पहले आदमी भगवान का नाम ले ले और उसके बाद कोई और पाप नहीं करे तो सब पाप नाश हो गए। ये शास्त्र का प्रमाण है। इसमें आदमी की शक्ति से आदमी नहीं करता है, भगवान अपने नाम की शक्ति से उसका उदाहरण करता है। ये तो कथा हुई यहां की। यमदूत वापस जाकर यमराज को कहते हैं, महाराज हम आपकी नौकरी से इस्तीफा देते हैं, हमको नौकरी नहीं करनी। ये आज तक हम जिसको पकड़ने गए उसको पकड़ के लाए, पता नहीं चार आदमी कौन ऊपर से खड़े होकर आके हमको धक्के देके निकाल दिया और कह दिया आप इसको मत ले जाओ। ऐसा एक 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 आदमी अगर मालिक हो तो काम करेंगे, दो दो तीन तीन मालिक होंगे नौकरी कैसे करेंगे हम। यमराज ने कहा क्या बात क्या है? बोला वो चार हाथ वाले विष्णु। विष्णु का नाम सुन के यमराज आनंद में कूदने लगा, विष्णु विष्णु के किसका दर्शन किया? अरे विष्णु दूतों का दर्शन हुआ आपको। बोला वो अजामिल पापी, वो कहते नारायण का नाम लिया वो छुड़ा के चले गया। तब यमराज कहते हैं विष्णु दूतो यम दूतो आज एक मैं आपको कथा बताता हूँ। धर्म को तो कोई नहीं जानता है, केवल हम 12 आदमी जानते हैं, उसमें अपना नाम सबसे आखिर में लेता है, भीष्म कपिलो बलि जनक व्यासिकी और वयन कहकर कहता है कि हम धर्म को जानते हैं। इसलिए आज के बाद ये हमने आपको पहले बताया नहीं है, अब हम आपको समझाते हैं। अंत समय कोई गोविंद गोपाल ना राम का नाम ले लो, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम उधर मत जाना। किसी के ऊपर तिलक लगा हो ऊर्धपूर्ण, ऐसे वैष्णव ऊर्धपूर्ण तिलक लगा हो, कंठी माला गले में डली हो, हमारा उसके ऊपर अधिकार नहीं है, वो भगवान विष्णु का हो जाता है, उसके पास कभी मत जाना। वृंदावन में एक आदमी मर गया, ऐसे ऊपर से कौआ जाया जा रहा था, उसने बीट गिरा दी और बीट गिरी उसके इधर, यमदूता के देख के इसको ले कैसे जाए, इसने तिलक लगाया हुआ है। अरे तिलक नहीं था, बीट थी, लेकिन इतने डरते हैं, जिसको तिलक लगा है कंठी माला है यमदूत उसके पास भी नहीं आता है। इसलिए हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं ये थोड़ा सा गोपीचंद का इतना तिलक लगा लिया करो, एक माला गले में कंठी तुलसी की डाल लिया करो, यमदूतों के से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। हमेशा के लिए यमदूत नजदीक भी नहीं आएगा, संसार के कष्ट से एकदम मुक्त होने का सरल तरीका है। वैसे भी तो कितने सारे इधर टुपका टुपके लगाते हैं गले में, कितने और भी रस्सियां डालते हैं, ये तुलसी की माला डाल लो, अपना जन्म सफल कर लो। जीभा गुण गोविंद गाय करण सुनो हर नाम, ये बहुत सुंदर गुरुवाणी का श्लोक है। कह नानक सुन रे मना न पड़े न जम के धाम, केवल मुख से गोविंद का नाम हरि कथा सुनने वाला, भगवान का सुंदर तिलक लगाने वाला, गले में कंठी मालना पहनने वाला यम के यम लोक नहीं जाता। यहां से आगे फिर दूसरी कथा शुरू होती है। हरे कृष्ण, दूसरी कथा शुरू करें तो बच्चे भजन गाएंगे, आशी भजन गाएगी, चलो आशी का भजन सुनो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।